हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 342 अनय उन दोनों की प्लेट में खाना सर्व कर ही रहा था कि जैसे ही उसने मनस्वी की प्लेट में सब्जी निकालनी चाही, वैसे ही मनस्वी ने उसका हाथ रोक दिया। और उसके इस तरह रोकने पर अनय ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो मनस्वी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, मेरी प्लेट में सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनय ने कन्फ्यूजन से कहा, क्यों क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये नहीं खाना है क्या, मैं कुछ और दूं क्या, या फिर अपने हाथ से ही लोगी, क्योंकि अभी तो तुम्हें ही भूख लगी थी। और अब उसकी इस बात पर मनस्वी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर खाना उसकी प्लेट में ही सर्व कर दिया और बोली, तुम्हारी ही प्लेट से खा लूंगी मैं, अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बोल रही थी मैं। इतना बोलते हुए वो अपनी चेयर से उठकर आगे आई और अनय के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। हाँ, अनय थोड़ा सा चौंकते हुए बोला तो मनस्वी चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, चलो अब शुरू करो, ऐसे क्या देख रहे हो। मनस्वी ने दोबारा से ये बोला और फिर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी प्लेट में ही रखी हुई रोटी का एक निवाला तोड़कर उसने खा लिया। तब जाकर अनय को उसकी बात पर भरोसा हुआ और अपने सेंस में वापस आते हुए उसने भी खाना शुरू किया। उन दोनों ने एक साथ डिनर किया आज पहली बार, और वो भी एक प्लेट से। वो दोनों हैं काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत को लेकर, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता कि ये खुशी कब तक रहने वाली है उनके साथ। स्टार स्टार स्टार, एक बड़ा सा बेसमेंट। उस बड़ी सी अंधेरी जगह पर एक तेज़ आवाज़ गूंजी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो तुम लोगों के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो ज़मीन पर मुँह के बल गिरे हुए पड़े विराज की आवाज़ है, और उसकी ये बात सुनकर उसके सामने खड़े हुए दो लोगों ने आपस में बात करते हुए कहा, सर हिम्मत तो देखिए इसकी, खुद ऐसी हालत में है लेकिन फिर भी हमें धमकी दे रहा है। उस आदमी की बात पर अरविंद ने जवाब दिया, हाँ लगता है इसे एक टाइम का खाना देकर गलती कर दी है हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा ही जान आ गई है इसमें, इसीलिए इतना फड़फड़ा रहा है। अरविंद के सामने खड़ी उसके जूनियर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कोई बात नहीं सर, ये जान ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली है इसके जिस्म में, फड़फड़ा लेने दीजिए, हर परिंदा अपनी आखिरी सांस लेने से पहले फड़फड़ाता ही है। अरविंद ने उसकी बात के जवाब में कहा, हाँ हाँ सही कह रहे हो। इतना बोलकर आपस में बात करते हुए वो दोनों हंसने लगे और उनकी हंसी की भारी आवाज़ उस बड़े से खाली बेसमेंट में गूंज गई। और उनकी ऐसी हंसी और बातें सुनकर चिल्लाता हुआ विराज एकदम खामोश हो गया और उसे अपना गला एकदम सूखता हुआ महसूस हुआ। वहाँ पर इतने दिनों से बंधा हुआ था लेकिन इस वक्त उसमें बैठने की भी ताकत नहीं थी और ज़मीन पर गिरा हुआ पड़ा था। किसी ने भी उसे उठाकर वापस कुर्सी पर बिठाने या बांधने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, वो आज तक उन्हीं कपड़ों में है, और इसके अलावा उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े किसी किसी जगह से फट गए हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। उसके चेहरे पर भी वहाँ की गंदगी लगी हुई है जो कि धूल मिट्टी ही है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही दयनीय लग रही है और वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है कि ये वही विराज है जो कॉलेज में एक नौजवान और हैंडसम लड़का था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है और वो बहुत डरा हुआ भी है। जैसे तैसे वो आधा सा उठकर बैठा और सरकते हुए साइड की दीवार तक पहुंचा। टेक लगाकर उसने बैठने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं तो उसे बहुत दिक्कत हो रही है। और उसने उन लोगों को हंसते हुए देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो सिर्फ मुझे डराने के लिए, मुझे पता है वो आदित्य अच्छा इंसान है, वो मुझे जान से नहीं मारेगा और कुछ भी नहीं करेगा मेरे साथ, वो बस ये सब मुझे डराने के लिए कर रहा है और तुम लोग भी। उसकी तरफ आगे आते हुए उस जूनियर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अच्छा तो अभी भी इतनी जान बची है, देखो कितनी आवाज़ निकल रही है इसकी, वैसे अगर डराने के लिए कर रहा है तब तो शायद कामयाब हो गए हैं सर, क्योंकि डर तो तेरे चेहरे पर और तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है। विराज अपने अंदर का डर छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, छोड़ो मुझे, एक बार मेरा हाथ खोलो फिर तुम लोगों को पता चलेगी विराज सहगल की पावर। उसके इस तरह धमकी देने वाली बात सुनकर अरविंद को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आगे आते हुए बोला, अभी भी धमकी देने वाले हालत में है, बस अब नहीं रहेगा। इतना बोलते हुए उसने लातों से विराज को मारना शुरू कर दिया और वो पहले से ही जख्मी था। उसकी चोट पर दोबारा से वार किया जा रहा था तो वो तेज आवाज में चीखने लगा और कुछ देर के बाद वो दोबारा से बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर अरविंद ने गुस्से से कहा, बड़ा आया विराज सहगल, 5 दिन से यहाँ पड़ा है और इसके घर वालों तक को तो पता नहीं चला अब तक इसके बारे में। उसके जूनियर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, और पता चलेगा भी नहीं, इस जगह के बारे में किसी को भी पता चलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अरविंदा अपनी जूनियर की तरफ देखकर बोला, हाँ बस जब तक कि कोई हमें यहाँ पर आते हुए न देखे। उन दोनों ने आपस में बात की और उस जगह को बंद करके वहां से बाहर निकल गए हैं। और वहां पर अब तक जो परछाइयां नजर आ रही थी अब एकदम सन्नाटा है और उस धुंधले से बल्ब की रोशनी में साइड में बेहोश पड़े विराज का शरीर नजर आ रहा है। स्टार स्टार स्टार। अगले दिन स्वीटी रोज की ही तरह अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी हो रही है और आदित्य ने उसके लिए वहां पर अपनी कार और अपना स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड उसका ड्राइवर बनाकर भेजा हुआ है, जिससे कि वो कहीं भी आए जाए तो उसकी निगरानी में और सेफ रह सके। इस बारे में उसने अक्षत और नैना से भी बात कर ली है। स्वीटी रेडी होकर निकलने वाली है और वो बाकी सबसे पहले ही रेडी हो गई। अक्षत पहले ही घर पर नहीं है और नैना विवान भी एक साथ ही अपनी शूटिंग के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन स्वीटी ने उन सबसे पहले ही नाश्ता कर लिया और जाते वक्त नैना से बताते हुए बोली, दी मैं निकलती हूँ, हो सकता है आज शाम को थोड़ा लेट हो जाए, बाकी का कोर्स कवर करना है जो इनमें एक हफ्ते का मेरा छूट गया। नैना ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा, अरे लेकिन अपना कोर्स तो तुम यहाँ घर पर रहकर भी कवर कर सकती हो, लेट क्यों हो जाएगा तुम्हें? तुम्हें पता है ना बाहर रहना इतना सेफ नहीं है अभी तुम्हारे लिए। स्वीटी ने उसकी बात का जवाब देते हुए बताया, घर पर नहीं हो पाएगा दी, मुझे एक फ्रेंड के साथ बैठकर उसका असाइनमेंट देखना होगा और फिर उसे समझकर कॉपी करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसकी बात समझते हुए नैना भी परमिशन देती हुई बोली, अच्छा ठीक है चली जाना, लेकिन फिर भी ज्यादा लेट मत करना, और अगर ज्यादा लेट हूँ या कोई भी और बात हो तो फोन कॉल कर लेना, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। स्वीटी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लेना दी, मैं कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी आपको, और वैसे भी कार से ही जा रही हूँ, ड्राइवर भी साथ रहेगा। उसकी बात पर नैना ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर स्वीटी वहां से बाहर निकल गई। कार ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड पहले ही कार के साथ उसका ही इंतजार कर रहा था और स्वीटी के आते ही वो अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और स्वीटी बैक सीट पर बैठ गई और उसे पता था कि उसे कहां लेकर जाना है, इसीलिए उसने स्वीटी से कुछ भी नहीं पूछा और उसके इंस्टीट्यूट की तरफ ही जाने लगा।
स्वीटी की कार अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी जब उसके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन रिंग हुआ और उसने वो मैसेज ओपन करके देखा तो वो अरुण का मैसेज था। उस मैसेज के हिसाब से अरुण ने उसे कार रुकवाने को कहा और उसका ये मैसेज पढ़कर वो समझ गई कि जरूर अरुण यहाँ पर ही कहीं आसपास है और उसे भी स्वीटी के इंस्टीट्यूट के बारे में पता था और स्वीटी ने खुद ही उसे बताया था कि इस वक्त वो अक्षत के घर में है और उसने मिलने के लिए कहा था तो वो इसीलिए ही आ गया है। उसका मैसेज पढ़ते ही स्वीटी ने एकदम से कहा, स्टॉप स्टॉप द कार प्लीज, एक मिनट के लिए रोकिए। स्वीटी की बात सुनकर भी उसके ड्राइवर ने कार नहीं रोकी, लेकिन उसने कार की स्पीड धीमी करके पीछे मुड़कर देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कार रोकने को क्यों बोल रही हैं आप मैडम? वैसे भी अभी आपका कॉलेज नहीं आया है और मैं ऐसे रास्ते में कहीं पर भी कार नहीं रोक सकता, मुझे सर ने मना किया है। स्वीटी ने इस बार थोड़ा जोर देते हुए कहा, अरे हाँ मुझे भी पता है हम अभी इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ ना, प्लीज़ एक मिनट रोकिए कार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इतना बोलते हुए वो थोड़ी परेशान भी लग रही है क्योंकि उसे इस बात की टेंशन है कहीं उसकी कार आगे ना निकल जाए और फिर अरुण वहां रास्ते में ही रह जाए। उसे इस तरह से परेशान देखकर आगे के ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिए और कार वहां पर सड़क के साइड में रोक दी और उस बॉडीगार्ड ने एकदम प्रोफेशनली पूछा, क्या ज़रूरी काम है आपको यहाँ पर, बताइए आप मुझे, क्योंकि मैं आपको अकेले कहीं भी नहीं जाने दे सकता। उसके इस तरह डायरेक्ट पूछने पर स्वीटी को कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे ही बहाना बनाते हुए बोली, मुझे वो, हाँ मैं श्रद्धा कुछ कुछ भूल गई हूँ, एक मिनट मुझे सोचने दो। ड्राइवर ने बहुत ही कन्फ्यूजन से पूछा, अभी तो बोल रही थी कि बहुत ज़रूरी काम है, और अगर इतना ही ज़रूरी था तो फिर इतनी जल्दी भूल कैसे गई आप इस बारे में? देखिए ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है और ऐसी जगह पर कार रोकना खतरनाक हो सकता है, कोई भी। ड्राइवर अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी उसने कार की तरफ दौड़कर आते हुए किसी को देखा और उसने हल्के से कार के दरवाजे पर दस्तक दी तो स्वीटी ने आगे बढ़कर अपनी एक साइड का डोर खोल दिया। वो पहले ही कार की बैक सीट पर अकेले बैठी हुई है तो उसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसने जैसे ही कार का दरवाजा खोला तुरंत ही कार के बाहर खड़ा वो लड़का एकदम से अंदर आ गया। उसने कहा और मास्क लगाया हुआ था, साथ ही पूरी गले तक चेन बंद करके जैकेट पहनी हुई है। उसे देखकर ड्राइवर एकदम पैनिक होते हुए बोला, ए लड़के तुम कौन हो और इस तरह से कार में कैसे घुसाए, अभी के अभी बाहर निकलो नहीं तो। उस लड़के ने अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क हटाते हुए कहा, अरे अरे रिलैक्स, और तुम ड्राइवर हो जाकर बॉडीगार्ड जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, मैं कोई गुंडा बदमाश तो नहीं हूँ जो जबरदस्ती घुसाया हूँ, तुम्हारी मैडम जानती है मुझे, क्यों स्वीटी? इतना बोलते हुए उस लड़के ने स्वीटी की तरफ देखा और ड्राइवर भी जवाब के इंतजार में स्वीटी की तरफ ही देख रहा है और उन दोनों की नजरें अपने ऊपर पाकर स्वीटी थोड़ा नर्वस फील कर रही है। क्रमशः